हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 417 मनस्वी के बॉडीगार्ड को इतने गुस्से में देखकर आदित्य ने जैसे तैसे उन दोनों के बीच आकर बात संभाली। अनय अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसे अपनी ही गलती लग रही थी। इसीलिए अंकित जो कुछ भी बोल रहा था वो चुपचाप खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। लेकिन आदित्य ने अंकित को चुप करा दिया। थोड़ी दूर पर खड़ा अंकित फिर भी गुस्से से अनय को इस तरह देख रहा था मानो उसे खा जाएगा। सुनैना भी इतनी देर से वहां खड़ी सारी चीजें नोटिस कर रही थी। मामला थोड़ा शांत होने के बाद वो आगे बढ़कर आदित्य की तरफ आई और बोली, मेरा इतना इंटरैक्शन नहीं हुआ है अनय और उसकी वाइफ से, लेकिन जितना तुमने बताया उसे हिसाब से मुझे लगता था कि उनके रिलेशन नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं है, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? नॉर्मल क्या नहीं लगता था? कुछ भी तो नॉर्मल नहीं है। कौन से नॉर्मल लोग ऐसा करते हैं? और वो लड़की तो पूरी पागल है, एक नंबर की सनकी। मेरा दोस्त तो बेचारा फंस गया बस उसके साथ। कहाँ वो इतना समझदार लड़का और कहाँ ये, बताओ। अपनी जान लेने की कोशिश की उसने सिर्फ खुद को साबित करने के लिए, आदित्य ने सुनैना की बात का जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सुनैना थोड़ी सी गंभीर हो गई और आदित्य की तरफ देखकर कहा, हाँ सच कहा तुमने, बिल्कुल पागलपन है ये। इस तरह से कोई भी प्यार साबित नहीं होता, बेवकूफ़ी है अपनी जान लेने या जान देने की कोशिश करना। उसकी बात पर आदित्य ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। इस बारे में बात करते हुए आदित्य और सुनैना ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन वे दोनों ही इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वहां का माहौल थोड़ा इंटेंस हो गया था। एक दूसरे को ऐसी सिचुएशन में कभी वे दोनों इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया। और तभी सुनैना बात बदलते हुए मनस्वी के बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोली, आदि तुम्हें इस बॉडीगार्ड का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लगता? आदित्य के साथ आकर खड़े होते हुए सुनैना ने उसे बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा। सुनैना की बात सुनकर आदित्य ने भी उसकी तरफ देखा और नोटिस किया कि वो बॉडीगार्ड गुस्से में अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधकर खड़ा हुआ है और अनय को घूर रहा है। आदित्य ने उसकी तरफ देखकर सुनैना की बात का जवाब दिया, हाँ कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल है शायद, या फिर खुद को ऐसा दिखा रहा है कि उसे अपनी बॉस की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। आदित्य को जितना समझ आया था उसे हिसाब से उसने बोला, तो सुनैना उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, मुझे तो पर्सनल मैटर लगता है ये। इतना ज्यादा ओवर पोजेसिव क्यों है और इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा था? तुम्हें अजीब नहीं लगा वो सब? पर्सनल मतलब? आदित्य ने एकदम झटके से सुनैना की तरफ देखा। उसे लगा कि वो जो सोच रहा था क्या सच में ऐसा ही कुछ है। जब उसे समझ आया कि सुनैना भी इस बारे में बात कर रही है जैसा कि वो समझ रहा है, तो हैरानी से उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गईं और उसने सुनैना की तरफ देखते हुए कहा, आर यू सीरियस? सुनैना ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, आई डोंट नो, बट मैं बस अंदाज़ा लगा रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही कुछ हो। तभी डॉक्टर वहाँ से बाहर निकले। उन्हें इमरजेंसी रूम से बाहर निकलते देखा अनय तुरंत ही भागकर उनके पास पहुंचा, मनस्वी की कंडीशन के बारे में पूछने के लिए। लेकिन उससे पहले ही अंकित उसके आगे आ गया और वो कुछ ज्यादा ही फिक्र दिखाते हुए मनस्वी के बारे में पूछने लगा। आदित्य और सुनैना भी वहां आ गए। उन्होंने अंकित का ऐसा ओवर रिएक्टिंग बिहेवियर नोटिस किया तो फिर से दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी उसकी हालत ठीक नहीं है और काफ़ी रिस्क है, क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अब उसे खून चढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अनय अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसे इस तरह से देखकर अंकित उसके सामने आकर उसे ताना मारते हुए बोला, अब ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो? पहले तो तुमने कुछ भी नहीं सोचा, और वैसे भी किस तरह के पति हो तुम? आज तक तो तुम कभी भी मैडम के साथ किसी भी मुसीबत में खड़े नहीं रहे, और आज अचानक से तुम्हें अभी उनकी फ़िक्र होने लगी। कहाँ थे तुम अभी तक? अंकित ने उसे ये सारी बातें बोली, लेकिन अनय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी आदित्य ने फिर से आकर उसे चुप कराया और वहां से साइड में लेकर गया और अंकित से बात करने लगा, जबकि सुनैना वहां अनय के साथ ही बैठ गई और उसे समझाते हुए तसल्ली देने लगी। दूसरी तरफ एक बड़ा सा डेकोरेटेड मीटिंग हॉल, जहां पर एक मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही थी। वहां पर लगभग 500 लोग आए हुए थे, जिनमें से ज्यादातर नामी गिरामी हस्तियां और जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे थे। उन सारे लोगों को इस मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए स्पेशल इनवाइट किया गया था। उन सभी लोगों के बीच अक्षत भी बैठा हुआ था, लेकिन उसने अपनी पहचान रिवील नहीं की थी। उसने मास्क लगाया हुआ था और नैना और विवान के बीच बैठा हुआ था, जिससे कि किसी का भी ध्यान उस पर ना जाए। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, वहां पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई और सभी उस फिल्म की तारीफ कर रहे थे, खासकर नैना और विवान की। मेन लीड कपल से ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और सभी को उनकी जोड़ी भी काफी पसंद आई। अक्षत ने भी काफी प्रोफेशनली उस मूवी को ऑब्जर्व किया और खत्म होने के बाद उसने उन दोनों की तारीफ करते हुए बोला, वाओ, यू बोथ वर लिली अमेजिंग, थैंक यू सो मच भाई। अपनी तारीफ सुनकर इतना बोलते हुए विवान उसके गले लग गया और नैना ने भी मुस्कुराकर अक्षत की तरफ देखा। विवान के इस तरह से गले लगने पर अक्षत पहले तो हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके सिर पर हल्के से मारते हुए बोला, तू क्या इतना खुश हो रहा है, तेरी कौन सी पहली फिल्म है, तुझे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। और वैसे भी मैं तो नैना की तारीफ कर रहा था, देखकर लग ही नहीं रहा है कि उसकी पहली मूवी है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है उसका। अक्षत की बात सुनकर उसे दूर होता हुआ विवान मुंह बनाकर बोला, हाँ हाँ ठीक है, गर्लफ्रेंड के आगे आखिर भाई को पूछता भी कौन है। विवान की बात सुनकर नैना भी उसे चिढ़ाने में अक्षत का साथ देते हुए बोली, अच्छा विवान, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अक्षत मेरी ऐसे ही झूठी तारीफ कर रहा है और मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है मूवी में। इतना बोलते हुए नैना ने गुस्से से घूर कर विवान की तरफ देखा तो विवान उससे डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, तुमने तो सच में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और अपने रोल में भी एकदम इन्वॉल्व लग रही थी, सच में तुमने बहुत हार्डवर्क किया है, देखना तुम्हें इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और बहुत ही जल्द तुम्हारे पास काफी सारी फिल्मों के ऑफर आएंगे। वे तीनों आपस में बात ही कर रहे थे तभी अक्षत का मोबाइल फोन रिंग हुआ, उसने रिसीव किया और उन दोनों के बीच से उठकर थोड़ा सा साइड में जाकर बात करने लगा क्योंकि वहां पर शोर काफी ज्यादा था। मोबाइल फोन पर बात करते हुए अक्षत एकदम ही सीरियस हो गया क्योंकि उसके असिस्टेंट अजय का फोन था, उनके आगे के प्लान को कंटिन्यू करने के लिए ही उसने अक्षत को फोन किया था। और तभी उसकी बात सुनते हुए अक्षत ने हॉल के गेट की तरफ देखा जहां से उसे रागिनी अंदर आते हुए नजर आई। उसने ऑरेंज कलर की नी लेंथ तक आई हुई वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी जिसके नेक एरिया के पास डीप राउंड कट है और वो ड्रेस काफी डिजाइनर पार्टीवियर लग रही थी। वो अपने हिसाब से काफी अच्छी तरह से रेडी होकर आई थी लेकिन वहां पर इतने सारे लोगों को देखकर वो वहां पर अंदर आने में थोड़ा सा घबरा रही थी। उसे देखकर अक्षत ने कॉल पर बोला, हाँ ठीक है, वो आ गई है, मैं देखता हूँ उसे पहले।
इतना बोलकर अक्षत ने कुछ सेकंड बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर मोबाइल फोन अपनी पॉकेट में रखकर वो सीधा रागिनी की तरफ आया और उसके करीब आकर थोड़ा सा दूर खड़ा हो गया। रागिनी पहले उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि अक्षत ने अभी भी मास्क लगाया हुआ था और वो उसकी तरफ देखकर बात भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उन दोनों को साथ में नोटिस करें। लेकिन तभी अक्षत ने उसका नाम लेते हुए कहा, रागिनी तुम आ गई। अक्षत की आवाज पहचानते ही रागिनी ने तुरंत मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अक्षत तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी और तुमने ये मास्क क्यों लगाया है। अरे वो बस ऐसे ही अटेंशन से बचने के लिए, लेकिन तुम एकदम सही टाइम पर आई हो और जो वहां पर जाकर साइड में खड़ी हो जाओ, अभी तुम्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, अक्षत ने सीधी तरह से उसकी तरफ देखे बिना ही कहा। तो उसकी बात सुनकर रागिनी थोड़ी कन्फ्यूज हो गई लेकिन यहां पर आने से पहले जब उसकी अक्षत से बात हुई थी तब उसने ये बोला था कि इस बार मीडिया और पब्लिक के सामने वो अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला है, तो रागिनी समझ गई कि वो इस सरप्राइज की बात कर रहा होगा और आखिरकार उसका प्लान फाइनल हो गया और अक्षत अब उसे दुनिया के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करने वाला है। ये बात सोचकर ही वो काफी एक्साइटेड हो गई और उसने धीरे से ओके बोलते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां साइड में जाकर खड़ी हो गई। उसके वहां से साइड में जाने पर एक दो लोगों के अलावा और किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया और फिर अब तक मूवी से रिलेटेड बातें भी खत्म हो गई थी और अब मीडिया वहां पर आ गई थी मूवी के कास्ट का इंटरव्यू लेने के लिए और बाकी लोगों की रिव्यू और राय उस मूवी के बारे में जानने के लिए। स्टेज पर फिल्म की बाकी सारी कास्ट के बीच ही नैना और विवान भी बैठे हुए थे और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी। उनके आगे 20-30 कुर्सियां लगी हुई थीं जिन पर मीडिया पर्सन बैठे हुए थे और कुछ लोग जो अब तक वीआईपी प्रीमियर में शामिल थे वे शायद वहां से जा भी चुके थे, लेकिन फिर भी अभी वहां पर अच्छी खासी 100-150 लोगों की भीड़ थी। तभी अक्षत एकदम से वहां स्टेज पर आ गया और उसने होस्ट के कान में कुछ कहा। अक्षत की वो बात सुनकर होस्ट ने माइक अक्षत के हाथ में दे दिया और अक्षत ने चेहरे से अपना मास्क हटाया और माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए बोला, हेलो गाइस, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अक्षत ने जैसे ही अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए ये बात बोली, सारे मीडिया रिपोर्टर्स का ध्यान उसकी तरफ हो गया और सभी कैमरे भी उसकी तरफ घूम गए। रागिनी ने भी उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी जगह से आगे आई और तभी अक्षत ने माइक पर कहा, मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ अपनी होने वाली वाइफ से। अक्षत की ये बात सुनकर वहां मौजूद ज्यादातर लोग तो हैरान रह गए लेकिन जितने भी लोग अक्षत के फैन और सपोर्टर थे वे जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे, क्रमशः